टाइम जब बात किया था हमसे, उसमें मैंने बताया था कि पांचवे अध्याय का ब्रेकडाउन समरी, पांचवे अध्याय में कौन से विषय की चर्चा होने वाली है। ओके, सो चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान तो दिया था, तो भी पांचवे अध्याय का हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतं स्वयं रूपकदामयं ददाति सुदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रद्वैत गदाधर श्रीवासा। हरे कृष्ण तो भगवान ने दूसरे अध्याय में तो भगवान ने पूरा आत्मा शरीर का ज्ञान बताया था और बुद्धि योग का माध्यम से इस अज्ञान से बाहर निकलने का मार्ग बताया था। तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया था कि जो ज्ञान के स्तर पर होता है उसको कोई करते हुए विशेष उसके लिए रहता नहीं है। चौथे अध्याय में हमने चर्चा की थी कि सब प्रकार के यज्ञ या कर्म का अंतिम परिणाम ज्ञान में ही आता है और फिर भगवान ने ज्ञान को ग्लोरीफाई किया था मध्य भाग में। अगर आप चेक करोगे तो सब जगह भगवान ने ज्ञान की महिमा बताई थी कि ज्ञान को जो जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण किया है वो द्वैतों से मुक्त हो जाता है, ड्यूअलिटी से, और वो ना किसी की इच्छा करता है ना कामना करता है। इस प्रकार के कुछ श्लोकों का वर्णन था। जो दुखी नहीं होता वो निरंतर हमेशा शांत रहता है। देयर मेनी सच क्वालिटीज डिस्क्राइब। तो भगवान ने ज्ञान का इस तरह से ग्लोरीफाई किया और फिर बाद में भगवान ने कहा कि जो एक्शन का जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो श्रेष्ठ है। तो इसमें कहने का तात्पर्य भगवान यही कहना चाहते कि जो ज्ञान से किया गया कर्म वो देखते हैं वो श्रेष्ठ है। तो बार बार भगवान ज्ञान को ग्लोरीफाई किया। इवन टेक्स्ट नंबर 41 में भी भगवान ने बताया ऐसा कि ज्ञान नहीं ज्ञान है सदृशम, ज्ञान से अधिक उत्तम कोई चीज नहीं है। इस तरह ज्ञान का ग्लोरीफाई किया और फिर बाद में बोल दिया इसलिए उठो और युद्ध करो। तब अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो गया। अर्जुन सोच रहे थे कि ज्ञान की बात हो रही थी अभी तक और अचानक युद्ध कहां से आ गया। अभी युद्ध करने का तो कर्म आ गया फिर से। तो पांचवे अध्याय की शुरुआत इसी प्रकार से होती है जो जिस तरह से तीसरे अध्याय की शुरुआत हुई थी, क्योंकि टेक्स्ट नंबर 41 तक भगवान ने ज्ञान का महिमा बताया और 42 में युद्ध करने की आदेश दे दी। तो फिर भगवान अर्जुन सोचने लगे कि ज्ञान अच्छा है तो फिर मैं कर्म क्यों करूं। और एक रूप से देखा जाए तो अर्जुन फिर से एक चांस ले लेना चाहता है कि अगर कर्म ना बोल दे कि एक बार युद्ध नहीं करना है ऐसा कुछ बोल दे तो अपना काम हो जाए तो युद्ध नहीं करना पड़े। लेकिन और दूसरा कुछ आचार्य ऐसा भी कहता है कि अर्जुन को इस तरह से बार बार कंफ्यूज करने का वो भगवान का इच्छा है। बाकी अर्जुन इतना मूर्ख नहीं है कि एक ही प्रश्न बार बार पूछेगा वो। तो वो तीसरे अध्याय का जो पहला श्लोक था और पांचवें अध्याय का पहला श्लोक बहुत ज्यादा मिलते जुलते। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक और पांचवें अध्याय का पहला श्लोक तो आप 5 बजे का पहले श्लोक का अनुवाद पढ़िए।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है?
हाँ, पहले आपने बताया था कि कर्म का त्याग करो, और दूसरे में कहा कि आप वर्क विद डिवोशन, भक्तिमय कर्म करो। तो एक्चुअली यहाँ पर दो चीज कहा है अर्जुन ने कि दो में से कौन सा, लेकिन भगवान ने दो चीज बताई नहीं है, और अर्जुन समझ गलत रहे, दो चीज तो बताई नहीं, तो आई कहाँ से? एक ही चीज बताई है भगवान ने, तो दो चीज तो बताई नहीं, लेकिन अर्जुन ऐसा समझा कि दो अलग अलग बात बताए गए। अर्जुन ऐसा सोचा कि भगवान ने कहा कि ज्ञान अच्छा है, कर्म बंद कर दो, और भगवान दूसरी चीज बताई कि कर्म जो अच्छा है वो भक्ति से किया जाए तो वो अच्छा है, तो फिर दो अलग अलग चीज, वो ऐसा सोचने लगा कि एक अलग दो अलग अलग है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, छोटा तात्पर्य ये, यहाँ से पढ़िए द फोर्थ चैप्टर, चौथे अध्याय वाला, चौथे अध्याय में तात्पर्य
चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यावरण ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त कर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर।
ये अर्जुन का, अब समझे ना, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पूरा क्लियर कर दिया कि अर्जुन ऐसा सोच रहे, वो एक बात को नहीं समझ पाया था बस, कि ज्ञान से युक्त होकर अगर कर्म किया जाए तो वो कर्म नहीं करने के बराबर ही है, ये बात को वो नहीं समझ पाया था, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा है। अन्यथा उसको काफी क्लैरिटी आई थी पहले, लेकिन जब फिर भगवान ने युद्ध करने का बोला इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ऐसा क्या है, फिर से क्यों इस बात को। तो ये एक रूप से भगवान का एक प्लान ही है कि अर्जुन इस तरह से मोह में आए। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान से युक्त हो तो उसको कर्म क्यों करना चाहिए, इसका आंसर पहले आ चुका है। आप में से कोई बताना चाहता है? अगर समझ लो कोई व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वो कर्म क्यों करेगा?
अनुसरण की जो लोग बड़े पुरुष करते हैं उसका आचरण सामने वाला।
यस, गुड। यह ज्यादा आचरण थी श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उसको संसार फॉलो करता है। अगर ज्ञानी व्यक्ति अगर कर्म करना बंद कर दे तो जो ज्ञान में नहीं है वो लोग भी उनका अनुकरण करके कर्म करना बंद कर देंगे, तो इसका परिणाम आएगा कि ज्ञानी को तो कुछ नहीं होगा लेकिन उसको अनुकरण करने वाले लोग का पतन हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म का पालन करता है केवल लोगों को एक अच्छा उदाहरण दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। तो इसलिए इस प्रश्न को लेकर के फिर भगवान ने अर्जुन को उत्तर देना शुरू किया दूसरे श्लोक से। पढ़िए।
श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म यह दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है।
हाँ, इसको बंद कर सकते हैं दरवाजा। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अगर कर्म का त्याग पूर्ण रूप से करना है या भक्ति में रहकर कर्म करना है। इन अदर वर्ड्स, ज्ञान से युक्त होकर कर्म करना है और कर्म का त्याग करना है, कर्म संन्यास। तो दोनों में से कौन सा अगर चुनना हो तो एक रूप से देखा जाए तो दोनों ही मुक्ति तो देंगे ही, लेकिन कर्म करना ज्यादा अच्छा है। भगवान इस चीज को बार बार रिपीट करते हैं कि कर्म करना ज्यादा अच्छा है। इसका एक अर्थ ये होना चाहिए कि साधारणतया जीवों में अपनी जिम्मेदारियों को त्याग करने की और कर्म का त्याग करने की वृत्ति होनी चाहिए, इसलिए भगवान इसको रिपीट कर रहे हैं। ये तो भगवान क्यों बार बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं? अब मैं अगर जिस तरह से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, अर्थात अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता था, और उसकी जिम्मेदारी क्षत्रिय धर्म के अनुसार भी थी और सबसे उत्तम भगवान का आदेश था, इसलिए तो भगवान यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं मेरे आदेश का पालन करना उससे उत्तम ना कोई कर्म है और ना ही कोई ज्ञान है, ये भगवान बताना चाहते हैं। तो इस चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, इस चीज को बार बार प्रस्थापित करने के लिए भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ये सिखा रहे हैं कि कृष्ण भावना से युक्त होकर के कर्म करना इससे अधिक उत्तम और कोई मार्ग नहीं है। हालांकि कर्म संन्यास से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इस चीज को भगवान ने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। तो कर्म से ज्ञान से युक्त होकर के जब आप कर्म करते हैं तो आपका हृदय शुद्ध होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हृदय की शुद्धि के बिना कर्म का त्याग करता है तब उसके हृदय में कुछ इच्छा जग सकती है, है ना? जैसे समझ लो कि कचरा कहीं पर भी है तो उसका जो रिएक्शन होगा, बाय प्रोडक्ट होगा, वो इच्छा है, भौतिक इच्छा। तो भौतिक इच्छा जन्म लेगी, लेकिन अभी तो उसने इंद्रिय जनित सारे कर्मों का त्याग कर दिया तो भी इच्छा को पूर्ण करने का कोई माध्यम बचा नहीं, क्योंकि उसने इंद्रियों का कर्म संन्यास किया ना, तो भी कर्म त्याग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, उसको संदेश खाने की, रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, लेकिन अभी उसने खाने का त्याग कर दिया है, वो खा नहीं सकता क्योंकि उसने इंद्रिय जन्य गिन करके इसको त्याग किया है, तो उसके लिए समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति का जनरली क्या होता है, वो स्ट्रगल करता है। लेकिन अनावश्यकता होकर के अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो ज्यादा व्यवहारु हो जाता है, अनासक्त होकर के कर्म करना, अर्थात कर्म करना किंतु फल की कामना के बिना। लेकिन ये कैसे हो सकता है, कोई पूछेगा ना, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि कर्म को भगवान को अर्पण करे तो, नहीं तो मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता है। कर्म भगवान को अर्पण करना ये इम्पोर्टेंट है। विरक्त होकर के कर्म करना सेफ है, उसमें नुकसान नहीं है, पतन का भय नहीं है, नहीं तो पतन हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने एग्जांपल दिया रसगुल्ला का, ऐसे कोई व्यक्ति आजकल कलयुग में तो ऐसे बहुत होता है, कोई ज्ञानी तो बच्चा ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ज्ञानी होते थे पहले भी कि जिसने ज्ञान प्राप्त किया, शरीर आत्मा का वो सब समझा, ज्ञान ये सृष्टि नश्वर ये सब कुछ समझ गया, लेकिन उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ था, और परिणाम यह है कि उसने त्याग तो कर दिया, हिमालय तो चला गया, लेकिन हिमालय में भी जाकर के फिर उसने इंद्रियां उसकी डिमांड करने लगी, और परिणाम यह आया कि उसने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, या फिर उसने कोई जैसे आप ऋषिकेश में जाओ तो ऋषिकेश में कई ऐसे लोग हैं साधु संत जो भी आप ज्ञानी ऐसे, और उसमें से अधिकतर तो मायावादी होते हैं और अधिकतर भोगवादी ढोंगी होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी योगा स्कूल खोल देते हैं और उसमें कई विदेशी स्टूडेंट आते हैं और उनको उनका चंदा हो जाता है, उनकी आमदनी हो जाती है और साथ साथ इंद्रिय भोग भी कर लेते हैं। तो इस तरह से उनकी इच्छाएं जो थी वो वहीं की वहीं रह गई थी और कर्म का त्याग कर दिया था, तो फंस गए। इसलिए फंस गए तो उसका गलत पाप में कर्म का शरण लेना शुरू कर दिया और पाप में कर्म का शरण लेने से परिणाम यह आया कि उसने जो ज्ञान भी इकट्ठा किया था उसका प्रभाव भी नष्ट हो जाता है और इसके लिए वो व्यक्ति पूर्ण रूप से उसका पतन होता है, पूर्ण पतन। तो इसको बोलते हैं इमेच्योर रिनाउंसिएशन, अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेना, अपरिपक्व अवस्था में कर्मों का त्याग करना। प्रभुपाद इसको बोलते हैं वांतासी। वांतासी का अर्थ होता है एक बार सारा वॉमिट करेगा और वॉमिट करने के बाद वो सारा फिर से पी जाएगा, वो सारा फिर से खा जाएगा, इसको बोलते हैं वांतासी। जिसको एक बार आपने मल समझ करके त्याग कर दिया था और उसको फिर से ग्रहण करना, ये बहुत ही ज्यादा घृणित कार्य है। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि कोई भी व्यक्ति कर्म का त्याग करता है पूर्ण ज्ञान की अवस्था को प्राप्त किए बिना। इसको बंद कर सकते हैं, उस साइड का पीछे का गेट बंद कर लो। सो ये इस चीज को आप थोड़ा क्लियरली समझ लेना तो बाकी सब चीज आसान हो जाएगी समझने के लिए। जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण सेटल नहीं हुआ है शुद्ध अवस्था में, जब तक कोई व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, उसके पहले अगर कोई व्यक्ति कर्म का त्याग करता है तो वो अपने लिए और समाज के लिए उत्पाद बनाता है, वो कष्ट खुद को भी देता है और दूसरों को भी देता है। तो इस चीज को भगवान विरोध करते हैं, इस चीज का विरोध करते भगवान, और कुछ नहीं कहते भगवान। इसलिए कहते हैं कि वो ज्यादा सेफ है, कर्म करते रहो, कर्म का त्याग बंद मत करो, कर्म का त्याग मत करो, दैट्स द पॉइंट। और आज के समय में ये कर्म संन्यास पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। आज के समय में कर्म करना ही प्रैक्टिकल है। सो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि विरक्त होकर के कर्म करने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान मजबूत होता है, ऐसा कहते हैं बलदेव विद्याभूषण। सो नाउ तीसरा श्लोक पढ़िए।
जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वो नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है।
भगवान कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति, ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करने वाला व्यक्ति क्यों अच्छा है, क्योंकि वो कर्म के फल की इच्छा नहीं करता और निरंतर सन्यासी ही माना जाता है उसको। सन्यास शब्द का जनरली अगर आप देखा जाए तो उसका सन्यास का अर्थ होता है कि जो मुक्ति की अवस्था से करीब हो, जो आपको मुक्ति प्रदान करे। तो जो व्यक्ति नित्य सन्यासी अगर होता है अर्थात उसको मुक्ति प्राप्त करना उसके लिए बहुत आसान है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है, यह समझ लो। एक बार मैंने किसी ने पूछा था, आई वॉज डिस्कसिंग कि मुक्त होना, मुक्त होने का क्या अर्थ होता है इसे? तो मुक्ति का अर्थ होता है कि भौतिक दृष्टि से सब प्रकार के दूसरों से मुक्ति, अर्थात हृदय की शुद्धि, राइट? इसको मुक्ति बोलते हैं। तो यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिल स्वप्य अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति मनसा कर्मणा मनसा गिरा, बुद्धि से, कर्म से और मन से, वचन से, अगर वो कृष्ण भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति के लिए वो इस शरीर में हो या इस शरीर में ना हो, वो मुक्त ही माना जाता है। जीवन मुक्त उसको बोलते हैं, जीवन मुक्त से उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त है, वो व्यक्ति को मुक्ति कोई ऐसा ऐसा स्टेज नहीं, ऐसा कि ये मुक्त हुआ तो उसको एयरप्लेन लेकर के कहीं जाना पड़ेगा, उसको मुक्ति नहीं, ऐसी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति का अर्थ होता है कि उसकी चेतना मुक्त होती है। इसलिए कहीं हमारे जैसे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद हम सबके बीच में ही चलते थे लेकिन वो जीवन मुक्त थे, मुक्त आत्मा है, उनको इस संसार का कोई स्पर्श नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं। ये भक्त भी जो पूर्ण रूप से भगवान का शरणागत होता है, उसके सारे क्रियाकलाप भगवान के द्वारा निर्धारित होते हैं और भगवान से संबंधित होते, तो उसमें भौतिक चीज का कोई स्थान ही नहीं है, भौतिक चीजों का कोई दोष ही नहीं है। जब दोष ही नहीं तो फिर उस व्यक्ति को क्या माना जाए? वो तो मुक्ति माना जाएगा। जब इसमें कोई दोष है ही नहीं तो मुक्त हो गया वो व्यक्ति। फिर भी वो कर्म कर रहा है, क्यों कर रहा है कर्म? क्योंकि यही कर्म उसकी मुक्ति का कारण है। सो ये डिटैचमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली डिटैचमेंट का एक सिंपल अर्थ है, हम इसको अगर सिंप्लीफाइड रूप से अगर देखें कि ये वैराग्य, ये विरक्ति क्या है, बहुत सिंपल है भक्तों के लिए। केवल ये सोचिए कि कृष्ण को क्या प्रसन्न कर सकते हैं, कौन सा कार्य है जिससे कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं। शरणागति का एक लक्षण है आनुकूल्यस्य संकल्प, केवल उसी चीजों को स्वीकार करना जो भक्ति के लिए अनुकूल हो, जिससे भगवान प्रसन्न हो सकते हो। सो केवल यही इच्छा करो, हाउ कृष्ण कैन बी प्लीज, नो अदर डिजायर। सुनने में ऐसा लगे कि हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर हमारी इच्छाओं का क्या? हमारी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। लेकिन अगर बुद्धिशाली व्यक्ति क्या सोचता है कि जो व्यक्ति सृष्टि का स्वामी है, संसार का स्वामी है, जिसने मुझे शरीर दिया है, जीवन दिया है, जिस जो मेरे सुख दुख को हिसाब को पूरा डिस्काउंट कर दिया है, और जिस व्यक्ति ने मुझे सब सुविधा दी है, उसकी इच्छा पूरी कर देंगे तो अपनी इच्छा अपने आप पूरी हो ही जाएगी ना। बुद्धिशाली ऐसा सोचता है, और अपनी इच्छा का वैल्यू भी क्या है? ऐसे भगवान की इच्छा की वैल्यू है, मेरी आपकी इच्छा की क्या वैल्यू है? हम तो ऐसी फालतू इच्छा करने वाले लोग हैं, यू नो, हम तो बचपन से अभी तक ऐसी ऐसी कई ऐसी यूजलेस डिजायर्स किए हैं, लेकिन ये सब पूरी हो या ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इच्छा कौन सी पूरी होनी चाहिए? भगवान की पूरी। अगर भगवान की इच्छा पूरी हो जाए तो ये समझना कि आप सफल हो, आपने आप निष्फल नहीं है, आप सफल हो, क्योंकि आपके माध्यम से आपने भगवान की इच्छा पूरी की है, तो ये आपकी सफलता है। दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो इसलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि एक क्रूरंदना, व्यवसायत्मिका बुद्धि, स्थिर करो अपने आप को किस चीज के ऊपर, किस चीज के ऊपर? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस लोक के विषय में क्या कहते हैं? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, सेकंड चैप्टर में था। श्री प्रभुपाद जी को ये अच्छा लगा था सुनने में।
शाखाओं में उसका बुद्धि, जिसका बुद्धि भगवान के ऊपर नहीं टिका उसका बुद्धि अनेक शाखाओं में
विभक्त रहती है
और
शांति उसको मिलती नहीं है।
और श्री प्रभुपाद को कौन सी बात बहुत पसंद आई थी? जब कभी भी हम व्यवसायत्मिक का बुद्धि श्लोक जो है उसका रेफरेंस देते हैं, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट रूप से है कि एक चीज के ऊपर बुद्धि को स्थिर करो। लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने उसको क्लियर किया था कि वो एक चीज क्या है, गुरु के आदेश का पालन, वो एक चीज है, उसी के ऊपर बुद्धि को स्थिर करो, ये है हमारा उद्देश्य। और ये क्यों इस पर इतना बल क्यों दिया जा रहा है इसके ऊपर, गुरु के आदेश के ऊपर? क्योंकि अंततो गत्वा वही एक माध्यम है लास्ट में कि जिसका सीधा इफेक्ट आपके लाइफ के ऊपर आता है, सीधा इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर लाइफ, क्योंकि सीधा कनेक्शन है ना गुरु के साथ कृष्ण का। तो कृष्ण आपके लाइफ के सारे जितने भी इंसिडेंट है, प्लस माइनस है, अप एंड डाउन है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसका सीधा कनेक्शन है गुरु के आदेश के ऊपर। अगर आप उसको फॉलो करते हो यू आर सक्सेसफुल, चाहे वो सिंपल आदेश क्यों ना हो। गुरु कहे कि झाड़ू मारो, यहाँ झाड़ू लगा दो, बस सिंपल आदेश क्यों ना हो, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन है आपके लाइफ के साथ, तो इसको फॉलो करना चाहिए। देन ओनली मुक्ति की अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। प्रभुपाद कह दे सन्यासी का अर्थ होता है सत्न्यासी, संस्कृत में सत का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्य है, अर्थात शाश्वत वस्तु, और न्यासी का अर्थ होता है त्याग करने वाला। इसका अर्थ ये होता है जिसने भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग किया हो, इसको सन्यासी बोलते। तो ये वैष्णव यही तो करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपनी निजी कामनाओं को, इच्छाओं का त्याग करता है, यही तो वैष्णव करता है। और फिर प्रभुपाद ने एक बंगाली वो लिखा है पास से आप बने थे ठाके सदा गौरांग बोले डाके, एक सॉन्ग में प्रभुपाद लिखे। इसका अर्थ होता है कि घर में हो या बाहर हो, अगर तुम सदा गौरांग का नाम देते हो, सदा गौरांग का चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन करते हो, तो आपके लिए सन्यासी मायावादी सन्यासी है, इससे अच्छा है कोई गृहस्थ कृष्ण भक्त, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण भक्ति, कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, कृष्ण का चिंतन करता है। इसलिए गृहे भाव बने थे ठाकुर, घर में रहो या वन में रहो, सदा गौरांग बोले जाको, हमेशा चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते रहो, बस यही जीवन का सफलता है। वन में रहने से या घर में रहने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ता है इससे कि आप किसका चिंतन करते हो, आपकी चेतना कहाँ पर है, इसके ऊपर ये फर्क पड़ता है। तो ये इस चीज पर बल देना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। इफ यू सिंपली वर्क फॉर कृष्णा You are better than a sannyasi. So, chatha, we can go to the text number 4.
अज्ञानी मनुष्य जे भक्ति में सेवा ने भौतिक जगत में शुद्धकरणात्मक अभ्यास थी भिन्न कहे छे। जो वास्तव में ज्ञानी छे तो कहे छे के जे मनुष्य आमाथी कोई एक मार्ग नु सारी रीते अनुकरण करे छे તે બંનેનું ફળ પ્રાપ્ત કરે છે.
કેવલ અજ્ઞાની વ્યક્તિ એસા બોલતા હૈ કે સાંખ્ય કા અર્થ હોતા હૈ નોલેજ, જૈસે ક્યા બોલે હમ આપકો એક્ઝામ્પલ કે રૂપ મેં બતા સકતા હું મેં. સાંખ્ય કે ઇસ પ્રકાર કે સમજ લો કે ફેન યે ચલતા હૈ, લેકિન ઉસકો પતા નહીં ફેન કિસી એક કોઈ અનજાન વ્યક્તિ હૈ ઉસકો નહીં પતા ફેન કૈસે ચલતા હૈ, તો ક્યા કરેગા, ઉઠાઓ ઉસકો નિકાલો બહાર, નિકાલો સારે નટ બોલ્ટ સારે નિકાલો, ખોલો, ખોલને કે બાદ ચેક કરેગા ભાઈ યે કૈસે ઘૂમતા હૈ, અચ્છા યે ઘૂમતા હૈ, એસે 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 ઘૂમતા હૈ, એસે ઘૂમતા હૈ, ઇસમે હૈ ક્યા, અચ્છા મોટર લગી હુઈ હૈ, મોટર લગી તો મોટર કૈસે ચલે, બહુ દો ચાર દિન દો ચાર સાલ રિસર્ચ ક્યા તબ પતા પડા કે મોટર મેં ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય કી આવશ્યકતા હોતી હૈ, અચ્છા ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય હોને કે બાદ ફિર યે મોટર કામ કરતી હૈ, અચ્છા તો રિસર્ચ વર્ક કા પરિણામ ક્યા આયા કે ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય કી આવશ્યકતા હોતી હૈ, અચ્છા તો કબ સે યહી સોચ રહે થે ઘૂમતા કૈસે, ઘૂમતા કૈસે, તો કહાં સે ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય આતા હૈ, હા ફિર વો ચેક કરેગા, ચેક કરતે કરતે પતા પડા ઓ અચ્છા ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય તો ઇધર સે આતા હૈ, તબ જાકે પતા પડા કે પાવર હાઉસ ઇઝ ધ રીઝન, તો પાવર હાઉસ સે આવા યે આતી હૈ, ક્યા બોલતે હૈ, સપ્લાય આતી હૈ, રાઈટ, બહાર સે આયે ના આવાજ, હા તો યે હૈ પૃથકરણ કા, ઇસકા પરિણામ ક્યા હુઆ, અંતર્ગત પતા પડા બાદ મેં ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય બાદ મેં પતા પડા ઉસકો, ઓર યહાં પર પહેલે હી પતા પડ ગયા ભાઈ યહાં પર પાવર હાઉસ કૃષ્ણ હૈ ઉસકા ફોલો કરો તો યુ નો ફેન ભી ચલેગા, એસી ભી ચલેગા, હીટર ભી ચલેગા, સબ ચલેગા, દસ આઈડિયા. તો સાંખ્ય કો એનાલિટિકલ સ્ટડી કરને કે બાદ વ્યક્તિ ઇસી નિષ્કર્ષ પર આતા હૈ કે જ્ઞાન સે યુક્ત હોકર કે કર્મ કરના, તો જો આપકો રિસર્ચ વર્ક કે બાદ પ્રાપ્ત હોતી હૈ વો અગર આપ અભી કરતે હો તો ઇસમે કોઈ અંતર નહીં હૈ, તો જો ઓલરેડી લર્નેડ હૈ વો યે જાનતા હૈ કે દોનો કા અલ્ટિમેટલી એક હી લક્ષ્ય હૈ, ભગવાન કો જાનના ઓર કે આદેશ કે અનુસાર કાર્ય કરના, બટ પીપલ ઉનકો એસા લગતા હૈ કે ઇસકો ઇસ ઢંગ સે કાર્ય, દે વોન્ટ ટુ ગો ઇન અ ડિફરન્ટ વે. કૃષ્ણ કા આન્સર એકદમ ક્લિયર હૈ ઓર સ્પષ્ટ હૈ કે યે દોનો કે લક્ષ્ય અલગ અલગ નહીં હૈ, દોનો કાર્યો કે લક્ષ્ય એક હી હૈ, ઓર કાર્ય ભી એક રૂપ સે દેખા જાય તો એક હી હૈ. કૈસે, જૈસા હમને બતાયા થા યોગા લેટર મેં પહેલે કે એક નીચે કા સ્ટેજ હૈ, એક ઉપર કા સ્ટેજ હૈ, તો યે સ્ટેજ સ્ટેજ કી પૂર્ણ અવસ્થા પ્રાપ્ત હોને કે બાદ વો સ્ટેજ આતા હૈ ઓર આપ વો સ્ટેજ પે પહેલે હી પહોંચ ગયે. અગર સમજ લો કે આપકી લિફ્ટ હોતી હૈ, એક લિફ્ટ હૈ ઓર ફિફ્થ ફ્લોર પે જાતી હૈ ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓર ફિફ્થ ફ્લોર પે વાળે ફિફ્થ ફ્લોર પે કોઈ વ્યક્તિ ઓલરેડી ખડા હૈ લિફ્ટ કે બહાર જ્યાં પર સ્ટેપ્સ હૈ, હર એક બિલ્ડિંગ મેં હોતા હૈ ના, અગર લિફ્ટ કા દરવાજા ખોલ કે અગર આપ બહાર નિકલતે હો ઓર વહાં પર આયા વહાં પર ખડા હુઆ હૈ, બોલે તુમ ઇધર કૈસે આયે, બોલે મેં લિફ્ટ સે, નહીં મેં તો તુમ્હે દેખા નહીં ઉપર આતે હુએ, તુમ સ્ટેપ સે તો આયે નહીં હો, તો તુમ્હારા યહાં આના ઇનવેલિડ હૈ, તુમ સ્ટેપ્સ ચઢ કે નહીં આયે, મેં તો દેખા નહીં અભી તક. દિસ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ વિથ ધોઝ, યે એસે લોગ કે લિયે હૈ કે જિસકો પતા નહીં હૈ કે લિફ્ટ સે ભી આ સકતે હૈ, તો યે જ્ઞાનીઓ કા કામ હોતા હૈ, જ્ઞાની એસે હોતા હૈ વો ઉનકો નહીં પતા કે યે તરીકા હૈ, વો સ્ટેપ્સ ચઢને વાલા તરીકા ઉનકો પતા હૈ, તો યે હૈ ઉનકા. લેકિન ઇન જનરલી ઇન લોગો મેં હોતા હૈ ક્યા, વો આપકો નેક્સ્ટ પાંચ નંબર કે શ્લોક મેં ઉસકા ચર્ચા કરતા હૈ, ઓર દેન મેં ઇસકો ચાર ઓર પાંચ કે દોનો કા સમરી આપકો બતાતા હું. पांच नंबर पढ़िए।
जानता है कि विशेषणात्मक अध्ययन संख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो शक्तियों तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है।
हाँ, ये वही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, लेकिन एम्फोसाइज कर रहे थोड़ा सा तात्पर्य पढ़िए। द रियल पर्पज ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च।
दार्शनिक शोध का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज की खोज है, क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणाम में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है, फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता है। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावना वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में कृष्ण भावना भावित कर्मों में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियों एक ही है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्त और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह दिखता है वही वस्तुओं को
यथा रूप में देखता है। ओके, तो एक रूप से देखा जाए तो यहाँ पर इन सब के पीछे दो महत्वपूर्ण चीज छिपी हुई है, एक है आसक्ति और दूसरी है अनासक्ति। इसके आधार पर इसकी चर्चा हो सकती है, कर्म के या कर्म के फल के प्रति आसक्ति और फल के प्रति अनासक्ति, इसी के आधार पर ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर सांख्य का अर्थ ज्ञान के रूप में किया गया है और योगा का अर्थ निष्काम कर्म के रूप में किया गया है, लेकिन इसका प्रोसेस बड़ा एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ में 2000 रुपए की नोट है, तो अभी बच्चे के हाथ में नोट अभी करे क्या, बच्चे के पास जाए तो बच्चे को बोलते लाओ नोट दे दो वापिस, तो बच्चा तो नाटक करना शुरू कर देगा ना, वो तो कुछ भी कर सकता है ना, नोट लेके भाग जाएगा, छिपा देगा या कुछ और करेगा, उसका प्लेन बना के उड़ाएगा या कुछ भी कर सकता है। 2000 रुपये नोट उसके हाथ में है, आप उसको डांटोगे बोलोगे लाओ दे दो साफ साफ तो थोड़ी देने वाला है, तो उसको क्या करना पड़ता है फिर, जनरली क्या करते हैं उसको कि आप कोई अच्छा मिठाई लेते हो, चॉकलेट लेते हो, आइसक्रीम लाते हो, टॉफी लाते हो, या फिर आप कुछ फल लाते हो, ऑरेंज लेते हो, बोले मिठाई बहुत मिठाई खाओ बड़ा अच्छा है, तो क्या होता है फिर वो उसको 2000 का नोट को एक बार रख देता है और फिर वो दूसरा अच्छी जात में उठा लेता है, राइट। तो ये बड़ा आसान तरीका है, आप उसको खींच नहीं सकते, फट भी सकता है ना नोट, तो उसको खींच नहीं सकते आप उसके हाथ से। तो ज्ञानियों का कैसा होता है, ज्ञानियों का तीन तरीका होता है, तीन प्रकार के ऐसे होते हैं सांख्य फॉलोवर्स ज्ञानी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हाथ में ये है क्लिकर, ये मेरे हाथ में है काउंटर, और इस चीज को मुझे लेना है, लेकिन मेरे हाथ में ऑलरेडी ये रिकॉर्डर है, तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं कि रिकॉर्डर को अगर मुझे जनरली आइडिया क्या है कि इसको छोड़ करके ये लेना, हाथ है कि मेरे पास और इसको मुझे छोड़ करके ये लेना, तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं इसकी रस्सी पकड़ के रखते हैं इस तरह से। तीन प्रकार के आप इसको डिवाइड कर सकते हो, एक ऐसा प्रकार होता है कि जो पूर्ण रूप से इसका त्याग नहीं करते, इनकेस कोई भी इनकेस आ गया तो, आप समझे ना, पूर्ण रूप से आधा आधा रखते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद आगे जाके अगर अपना काम ना हुआ तो ये रस्सी जो खींची वो वापस ले सकते, तो रस्सी पकड़ के रखते, लेकिन उसको छोड़ दिया था। आप समझे, पूर्ण त्याग नहीं है वो, आधा त्याग है। तो एक इस प्रकार के लोग होते हैं। दूसरे इस प्रकार के लोग होते हैं कि जो लोग वानतासी होते हैं, वानतासी मैंने बताया ना अभी, हो बड़े उत्साह में आ जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ देता है, त्याग कर देता है, फिर बाद में कुछ ठोकरे खाता है और फिर लगता है कि अब मजा नहीं है इसमें, वही अच्छा था जो पहले था, वही अच्छा था, तो वापिस सब कुछ ले लेते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का होता है ज्ञानी। और तीसरे प्रकार का ज्ञानी होता है, वो क्या करता है कि सब कुछ त्याग देता है, मिस डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग, अनासक्ति, सबकी अनासक्ति, लेकिन किसी में भी आसक्ति नहीं, अटैच टू नथिंग, यू नो, अर्थात वो माइनस में से जीरो तक आता है, लेकिन जीरो से प्लस नहीं होता है वो। जैसे कुछ हमारे ऐसे सो एक संप्रदाय है धर्म, अब इस कुछ लोग है कि जो लोग जो सफेद कपड़ा पहन करके रोड पर चलते हैं ना, तो हाँ जैनिज्म, वो लोग माइनस से जीरो तक आ सकते हैं अगर पूर्ण रूप से फॉलो करे तो, अर्थात वो शरीर और आत्मा के प्रभाव से और उसका ज्ञान से मुक्त हो सकते हैं अगर ज्ञान का संवर्धन करे और पूर्ण रूप से नियमों का पालन करे। हालांकि उनमें भक्ति जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मुक्त की अवस्था तक पहुंचने का चरम सीमा उनको प्राप्त करना चाहे तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि वो भी शास्त्र से भी आधारित नहीं है, वो तो पूरा उसका इतिहास ही अलग है, लेकिन कोई ऐसा कोई त्यागी व्यक्ति है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, वो ग्लास के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसमें या तो पानी डालो या दूध डालो, कुछ तो होना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, उसके अंदर पानी था तो दूध डालने के लिए जनरली पानी निकालना पड़ता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि पानी निकाल देते हैं लेकिन दूध डालते ही नहीं है, ग्लास को उल्टा करके रख देते, खाली ग्लास काम ही नहीं है। ऐसे माइंड है, तो मन में क्या होता है कि मन खाली नहीं रह सकता, वो भरा रहना पड़ता है, वो खाली नहीं रह सकता। तो अगर या तो कृष्ण रहेगा या माया रहेगी, दो में एक तो रहेगा। ये लोग क्या करते हैं, कृष्ण को तो लाते ही नहीं और माया को हटा देते, तो होगा क्या, एम्प्टी माइंड, एम्प्टी माइंड लेफ्ट इज वर्कशॉप, है ना, शैतान शैतान बन जाएगा फिर, हो गया। तो ये तीन प्रकार के अलग अलग सैंपल जो दिए ज्ञानियों के कैटेगरीज, ये तीनों का परिणाम होता है कि बहुत ही ट्रबल होती है और अंत में परिणाम प्राप्त नहीं होते। लेकिन ये इतनी छोटी सी बात को समझ नहीं सकते कि कृष्ण भावनामृत में आसक्ति और विरक्ति दोनों एक साथ काम करती है ऑटोमेटिक, क्योंकि इसके लिए कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़े। इस कमरे में उजाला है, अंदर वाले कमरे में अंधकार है। अब ये अंधकार में कोई व्यक्ति है तो उसको उजाले के प्रति आने में, बस उजाले के प्रति आएगा तो अंधकार अपने आप जाएगा ना, तो उसके लिए कोई अलग से प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। वो जो सेकंड चैप्टर में था, थर्ड चैप्टर में कहा, सेकंड परम दृष्टा निवर्तते, परम दृष्टा निवर्तते, अगर आपको अच्छी चीज मिलेगी तो बुरी चीज का आप त्याग करोगे। तो कृष्ण भक्ति का एक मार्ग ऐसा है जिसमें कृष्ण के प्रति और उनकी भक्ति मार्ग के प्रति आसक्ति और माया अर्थात भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति या विरक्ति, ये अपने आप एक साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप कृष्ण भक्ति में नहीं जुड़े थे उस समय आपको टीवी देखना मूवीज देखना ये सब अच्छा लगता था, लेकिन ये आपको भी नहीं पता पड़ा कि ये कब खत्म हो गया, ये आपको ही नहीं पता पड़ा कि इसका रुचि कैसे गया। यू नो जैसे कोई चेन स्मोकर होता है, जब कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो उसको खुद को ही नहीं पता पड़ता कि ये चेन स्मोकिंग का हैबिट चला कैसे गया। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण भक्ति का विशेष लाभ है कि आप एक साथ छोड़ते भी हो और दूसरी तरह से ग्रहण भी करते हो, कृष्ण को ग्रहण करते हो और जो कचरा है उसको हटाते हो। मुख में राम राम बगल में छुरी, तो बगल वाली छुरी क्या होती है? गिर जाती है जब मुख में राम राम आता है। तो ये उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसे भी कृष्ण रसमय है, सबको संबंध की आवश्यकता हो, सब एवरीवन वांट्स संबंध, सबको आसक्ति चाहिए, सबको पॉजिटिव एंगेजमेंट चाहिए। तो कृष्ण पॉजिटिव एंगेजमेंट दे रहे, यशोदा माता, तो यशोदा माता पॉजिटिव वो बाल्य रस दे रहे है ना। यशोदा माता कृष्ण को इतना प्यार करते थे कि जब गैये चराने के लिए जाते थे, देखो बलराम को बोले तुम इसको इधर से संभालना, देखो आगे जाके वो ज्यादा मिट्टी में वो कंकर ना आ जाए ध्यान रखना, ज्यादा धूप में ना चले ध्यान रखना। सो ही वाज सो अफेक्शनेट टू कृष्णा, राइट। तो और फिर बच्चे जब बकासुर को मारा था तो भगवान थे वो सब, किसी ने कहा भाई ये तो सांप नहीं लगता है, ये तो कोई गुफा है, और किसी ने कहा ये गुफा नहीं है तो कोई सांप है, कोई बड़ा अजगर है। सब लोग कुछ लोग कंफ्यूज थे, कुछ बोले नहीं नहीं यही ये तो गुफा है गुफा, कुछ बोले नहीं ये तो सांप, देखो देखो सांप जैसा है। फिर एक दो चार बच्चों ने कहा अरे इतना चिंता क्यों करते हो, रोज कृष्ण किसी ना किसी को तो मारते ही रहते अगर ये असुर भी निकल गया तो इसको भी मार देंगे उसमें क्या बड़ी बात है। तो ऐसा बोल करके चले गए मुख के अंदर, अगासुर के मुख के अंदर। लेकिन कृष्ण इस तरह से उनके साथ मित्रता का व्यवहार भी करते थे। कृष्ण को बोल दिया वो तालवन के पास खाने का इच्छा हुआ है, बोली इच्छा हुई तो बोला ताल 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 के फल खाने की इच्छा हुई है। तो किसने बोला वहां पर तो धेनुका रहता है, और धेनुका रहता है कोई ज्यादा नहीं उधर तो। तो एक ने कहा अरे आएगा तो आएगा, कृष्ण है ना इधर धेनुका आएगा तो धेनुका को मार देंगे उसमें क्या है। तो ये तो ग्वाल बालों का ये विश्वास था, भक्ति था, और फिर गोपियों का भी विश्वास था। गोपी जब कृष्ण गाया चला के वापिस आते तो कृष्ण उनको हमेशा देखते थे। लेकिन ये सब आध्यात्मिक जीवन में संभव होता है, आध्यात्मिक जीवन का इतना मधुर संबंध को कोई व्यक्ति देखता है तो वो भौतिक संबंधों का त्याग करने में उसको कोई परेशानी नहीं होती। और भौतिक संबंध हमेशा कष्ट में होते हैं। एक बार मैं एक न्यूज में पढ़ा था, एक व्यक्ति उसकी फोर्थ वाइफ को सेकेंड टाइम डिवोर्स दे करके सेकेंड वाइफ को तीसरी बार शादी कर रहा था आप समझे, मैं भी इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा समझने में तो ये कहीं न्यूज पेपर में पढ़ा था, ये है फॉरेन कंट्रीज की वास्तविक।
ऐसा ही एक ओल्ड मैन थे, शादी किया उन्होंने तो वो अपना पुराना एल्बम उसको दिखा रहे थे तो पता चला कि उसकी ये पोती ही थी, उसी से उसने उन्होंने शादी की। तो वो यंग एकदम 18 साल या 16 साल की और ज्यादा होते वो
उसको खुद को ही नहीं पता ये फॉरेन कंट्रीज में आजकल इंडिया में भी ऐसा होने लगा। मैं ये बता रहा था कि फोर्थ वाइफ के साथ तीसरी बार उसका डिवोर्स हुआ और सेकंड वाइफ को तीसरी बार मैरिज किया, इसका अर्थ है कि उसके रिलेशनशिप में कोई रस ही नहीं है, कहीं पर कोई रिलेशनशिप जैसी कोई चीज ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, तो ऐसे सारी जो रिलेशनशिप जो है वो इतनी डिस्टर्ब्ड है। तो ऐसे रिलेशनशिप से जब कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है वाह नेक्टर ये तो अमृत जैसा है कृष्ण कथा, तो फिर क्यों भला कोई किसी भौतिक चीजों में रस रखेगा। जब कृष्ण कथा बार बार सुनेगा तो अस्वाभाविक रूप से उसका आकर्षण जो है वो चला जाएगा। सो फर्दर फोकस विल टेक लेटर, वी स्टॉप हियर, टाइम हो गया इसलिए।